वेलकम टू माई पॉडकास्ट सारथी। पिछले हफ्ते हम मिले थे हैरी से और हमने सुनी थी उसकी कहानी। कुछ पन्ने उस कहानी के अधूरे रह गए थे। आज इस एपिसोड में हम हैरी से आगे बात करेंगे। हेलो हैरी, कैसे हैं आप?
हाय मैम, हाय महक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ
जी। सो हैरी, हमने पिछले हफ्ते जब बात करी थी तो आपने बताया था कि आप लुधियाना रिलोकेट कर गए अपने हस्बैंड के साथ, रातों रात चले गए, और वहां जाकर आपके हस्बैंड ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया और आपके हालात बहुत अच्छे हो गए, आप फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आई। तो क्या उसके बाद आपका वो एक सुखी जिसे कहते हैं मैरिड लाइफ फैमिली का सपना पूरा हुआ हैरी?
कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं, कुछ सपने बहुत अधूरे होते हैं। मेरे केस में वही हुआ, क्योंकि लुधियाना जाने के बाद मुझे लगा था कि जिंदगी ट्रैक पे आ गई है, पर वो कुछ टाइम के लिए थी। उसके बाद वो दोबारा से रीस्टार्ट हुआ तो मुझे एक साल के अंदर ही फिर से, लाइक लुधियाना में हम लोग 4 साल रुके, बट 1 साल के अंदर, 4 साल के बाद इमीडिएटली 1 ईयर के अंदर मुझे फिर से डिसीजन लेना पड़ा उस सिटी को छोड़ के अमृतसर में शिफ्ट होने का। और रीजन यही था कि पेरेंट्स को था कि बेटी जो है वो, तब तक बेटी मेरी लाइफ में, मेरी बेटी भी आ चुकी थी, मैं अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तो पेरेंट्स को ये था कि बेटी अगर हस्बैंड के साथ है वो सेफ है, तो इसलिए बेटी को हस्बैंड के साथ एक परिवार की तरह दोबारा से रहना चाहिए। तो मैं फिर से अपने हस्बैंड के साथ अमृतसर शिफ्ट हो गई।
और तो जब आप अमृतसर शिफ्ट हुए हैरी, उसके बाद हालात कैसे रहे, कैसे आगे का सफर चलता रहा वहां?
फिर से वही एक सपना जैसे लुधियाना में हुआ कि कुछ टाइम तक बहुत अच्छा, अपना घर खरीदा, एक सपना था जिंदगी में गोल्डन टेम्पल के सामने, स्वर्ण मंदिर के सामने अपना घर हो, तो भगवान ने वो सपना मेरा पूरा करा, पर शायद वो सपना भी सपना था, क्योंकि 4 साल अमृतसर में रहने के बाद फिर से वो घर मेरी आंखों के सामने बिका और मैं फिर से सड़क पे आ गई। इस बार मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 2 बच्चे थे, फाइनेंशियली मेरे पास एक पैसा फूटी कौड़ी नहीं थी, जिम्मेवारी थी 2 बच्चों की।
तो हैरी, कारण इस बार फिर वही ड्रग्स का ही रहा?
बिल्कुल, विल पावर नहीं थी, कुछ टाइम तक छोड़ते थे, जब थोड़े से सेटल होते थे, पैसा आना शुरू हो जाता था, तो फिर से वही कंपनी, वही से ड्रग्स, दोबारा से लाइफ में वही शुरू हो जाता था। तो जैसे हम लोग सड़क से शुरू होके जिंदगी में प्रोग्रेस करते थे, वैसे ही दोबारा लाइफ सड़क से ही शुरू हो जाती। घर में खाने को नहीं है, बच्चे गली में नंगे घूम रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं है, मम्मी सारा दिन बाहर काम करके धक्के खा रही है, हस्बैंड घर आ रहे हैं, घर से आटा तक उठा के बेच रहे हैं, सिलेंडर तक उठा के बेच रहे हैं, तो वो बहुत कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इस बार सोचा कि बहुत हो गया, नहीं अब और बर्दाश्त नहीं करना।
बहुत तो बहुत तकलीफ होती है हैरी ये सब सुनकर कि आपको अकेले इतना सब कुछ सहना पड़ा।
मैं फिर बताया कि एक पॉइंट पर आके आपने कहा कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को देखना है, अब मैं और ये सब चीजें नहीं लूंगी, तो मुझे कुछ बताएंगे। और आई थिंक आपने फिर मुझे ये भी बताया कि एक पॉइंट पे जाकर आपने हस्बैंड से अलग होने का डिसीजन ले लिया।
हाँ जी।
तो मुझे हैरी वो बताएंगे कि वो एक मोमेंट जो होता है कि जब हम कहते हैं कि बस अब हो गया, अब और नहीं
जी,
उस मोमेंट में बहुत हिम्मत लगती है हैरी। बहुत सारी औरतें जो आज हमारा शायद ये पॉडकास्ट सुन रही होंगी, वो उसी एक मोमेंट पे खड़ी हैं जहां पे आगे बढ़ना चाहती हैं पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। तो क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि उस एक मोमेंट में वो हिम्मत कैसे आती है, कैसे आई वो विल पावर?
बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस जर्नी के दौरान जब जब हम लोगों ने शिफ्ट करा, तो अमृतसर में शायद एक टाइम ऐसा आया था, मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, और मैंने कोशिश भी करी, वो पता नहीं भगवान का मेरे सर पे हाथ था या मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, वो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट उस दौरान मेरे बेटे ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड घर में कुछ छोड़ते ही नहीं थे, आटा तक उठा के बेच देते थे, ठीक है मैं एक बंदे को लाइफ में झेल रही हूँ, मेरी किस्मत ऐसी कि मेरी शादी हो गई, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे उनको झेलना है किसी ना किसी तरह। बट एक दिन जो हरकत मेरे हस्बैंड करते थे, मेरे बेटे ने वही हरकत करी, उसने घर से 50 रुपीज चोरी करे और बाहर जाके उसने उन पैसों को कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करी। मेरे लिए ये झटका बहुत बड़ा था क्योंकि बेटा अभी बहुत छोटा था, वो सिर्फ 7 साल का बच्चा था, 7 साल का मेरा बेटा था और वो उसने घर से चोरी करी। मतलब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं बच्चे उनको फॉलो करते हैं। तो मुझे तब ये लगा कि नहीं, ये मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है, पर मैं अपने बच्चों की किस्मत वैसी नहीं बनाऊंगी किसी भी कीमत पे। तो वो जो उस मोमेंट पे हिम्मत मुझे मिली ना, वो शायद कहीं ना कहीं मेरे बच्चे थे, जो मेरी स्ट्रेंथ थी कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए जीना है, इनके लिए कुछ करना है। तो उसी पल मैंने सोचा कि नहीं, अब और रोना धोना नहीं। मैंने इमिडिएटली डिसीजन लिया कि अब मुझे घर छोड़ देना है, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, मैं एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ एक सुखमय लाइफ जीऊंगी।
जी हैरी, जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को छोड़कर अलग हो जाएंगी, तो उस टाइम पे क्या आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से या इन लॉज की तरफ से किसी तरीके का सपोर्ट मिला? हस्बैंड तो नहीं मैं समझ सकती हूँ, बट इन लॉज ओवरऑल और पेरेंट्स, भाई बहन, वहां सोसाइटी, कोई सपोर्ट मिला हैरी?
बड़ा सुन के दुख हो रहा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब आप ये डिसीजन लेते हो ना कि आप सिंगल मदर बनने वाले हो, ठीक है, और रीजन भी सबको पता है, पूरी सोसाइटी को पता है, आपके पेरेंट्स को पता है, आपके बहन भाइयों को पता है और आपके इन लॉज को, सभी को पता है रीजन क्या है, गलती किसकी है ये भी पता है, पर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में गलती किसकी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के चक्कर में चाहे फीमेल सही है, गलती उसकी है। तो इवन मेरी फैमिली ने, जब मैंने ये डिसीजन लिया था, मेरे अपने पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं करा था, उनके अकॉर्डिंग यही था कि जहां मेरी शादी हुई है, जिस घर में हुई है, मेरी अर्थी वहीं से निकलनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मेरे बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट करा, ना मेरी अपनी फैमिली ने, और इन लॉज वालों ने तो शादी के बाद ही हाथ खड़ा कर दिया था क्योंकि उनका बेटा ऑलरेडी पहले से ही ड्रग्स लेता था, तो उनकी तरफ से तो खैर सपोर्ट मुझे क्या मिलना था। पर एट द टाइम कहीं ना कहीं सोसाइटी ऐसी है, उसके डर से मेरे पेरेंट्स ने या मेरे बहन भाइयों ने भी मुझे सपोर्ट करना जरूरी नहीं समझा।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप हैरी, और बहुत ही दुख होता है ना इन सब बातों को सुनकर।
हैरी जब इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं और कोई सपोर्ट नहीं होती है, तो जहां एक एक मोटिवेशन होता है कि ये जो नरक मैं झेल रही हूँ इससे मुझे अपने आप को और अपने बच्चों को निकालना है, बहुत सारे डर भी होते हैं
जी,
है ना, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, तो उन सब इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करना या उनके साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ना कि मैं अपनी लाइफ को हैंडल करूंगी, एक बहुत ही क्या बोलूं मैं उसको, एक बहुत ही बहुत पावर चाहिए उसके लिए, बहुत विल पावर चाहिए है, बहुत आदमी अपने आप में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हैरी। सो मुझे लगता है कि आप ऐसी हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी और हमारे व्यूअर्स को भी जो सुन रहे हैं कि आपके फियर्स क्या थे उस टाइम पे और आपने उनको ओवरकम कैसे किया?
सबसे बड़ा फियर था कि सोसाइटी में खुद को कैसे मुझे स्टैंड करना है, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया जाता है कि आप सिंगल मदर बनने वाले हो, सबसे पहले आपके अगेंस्ट सोसाइटी होती है, ठीक है। मुझे 11 साल हो गए हैं अकेले अपने बच्चों के साथ रहते हुए, आज तक अभी मैं इंडिपेंडेंट हूं, दोनों बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, अभी तक मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि मैं सिंगल मदर क्यों हूं। मुझे कहीं, आई डोंट हैव माय ऑन हाउस, मैं रेंट पे रहती हूं, अगर मुझे रेंट पे कहीं शिफ्ट करना पड़ता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड कहाँ है, और अगर नहीं है तो रीजन क्या है, और अगर मैं बता देती हूँ कि आई एम सिंगल मदर तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि इनको घर रेंट पे दिया जाए या ना दिया, बिकॉज आई एम ए सिंगल लेडी, आई एम ए वोमेन, ठीक है, तो मुझे अकेले भी रहने का हक नहीं है। एंड आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि जब मैंने ये डिसीजन लिया था आई वॉज वेरी यंग, माई किड्स वर वेरी स्मॉल, आप अकेले हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर इजिली अवेलेबल फॉर एवरीवन, अंडरस्टैंड, मतलब आदमियों के दिमाग की ये मेंटेलिटी होती है कि अकेली बंदी है, इसके साथ जो चाहे कर लें क्योंकि इसके हालात पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये एक जगह नहीं, मेरी अपनी ही फैमिली में, मेरे जो अपने थे, सॉरी मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकती, मैं नहीं बता सकती, बट मेरे अपनों ने भी मेरे साथ वो सब करने में कसर नहीं छोड़ी। तो शायद कहीं ना कहीं आप बाकी चीजों से फाइनेंशियली आप मैनेज कर लोगे. आई वॉज वर्किंग, ठीक है, मैं थोड़ा था ज्यादा था, आई वॉज हैप्पी विद माई किड्स, पर वो जो मोमेंट होते ना उन चीजों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जहां से बेसिकली पंजाब से हूं, तो मैं पंजाब छोड़ने का डिसीजन मैंने ले लिया कि मुझे अब पंजाब में रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं रहूंगी तो मेरा मेंटल लेवल उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा. तो आई स्टार्ट सर्चिंग माई जॉब और फाइनली शायद भगवान जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था कि मुझे पंजाब से बाहर जॉब मिल गई और 10 साल तक मैंने पंजाब से बाहर रहकर ही जॉब करी. और उन दिनों में, उस लंबे पीरियड में, ये नहीं कि मैंने सहा नहीं है, पर वो लेवल बहुत कम हो गया और मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग हो गया कि अभी लाइफ में कुछ भी होता है तो आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर. जो भी है भगवान ने बहुत अच्छा करा. एटलीस्ट वो जो एक गंदी वाली लाइफ थी, एक नाली के कीड़ों वाली लाइफ की, आपको पता ही नहीं है कब आपके ऊपर कोई पैर रख के आपको मार देगा, आपको आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए, आप कब खुद सुसाइड कर लो, आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, एटलीस्ट वो चीजें अब जिंदगी में नहीं है मेरे. वो सेल्फ ब्लेस्ड कि एटलीस्ट बच्चे थे, मेरी हिम्मत थी, मेरी ताकत थी. और कहीं ना कहीं इसमें मैं ये बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने एटलीस्ट मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था कि जब मुझे एक्चुअल में जरूरत पड़ी तो मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो पाई. तो उस मामले में शायद मैं तो यही बोलूंगी, ये सभी पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो मेक श्योर शादी से पहले उसे इतना आप सेटल कर दें लाइफ में कि भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो अपने पैरों पे वो खुद से स्टैंड हो जाए. इतना तो बच्चे को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. हमारी सोसाइटी में ज्यादातर हम लड़कों के बारे में सोचते हैं कि बेटे को सेटल करना है, बेटी का क्या है, वो तो दूसरे घर में चली जाएगी. अगर बाय चांस अनलकीली मेरे जैसा केस आ गया कि ना आपके पास मायके वाला घर है ना ससुराल वाला, तो वो बच्ची कहाँ जाएगी, उसके लिए कोई घर नहीं है. और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, गाड़ी के नीचे आ जाए, बच्चों के साथ खुद को खत्म कर ले, या फिर जो वो समाज के भेड़िए उसे खा जाए. तो इन सब चीजों से बचने के लिए एटलीस्ट मेरी ये सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं कि जरूरत पड़ने पर वो अपने पैरों पर स्टैंड हो सके.
ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है हैरी जो आप दे रहे हो, क्योंकि और इस पॉडकास्ट द्वारा हम भी यही बात दोबारा कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि जैसे हम अपने बेटों को सिखाते हैं कि तुमने अपना घर बनाना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है, आई थिंक आ गया है कि हम अपनी बेटियों को भी बचपन से ही वो सिखाएं कि अपना घर बनाना है, अपने आप को एडुकेट करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है और इंडिपेंडेंट रखना है. सो आई थिंक मुझे आपकी जर्नी में एडुकेशन का इम्पोर्टेंस साफ नजर आ रहा है, जो मैं अपनी लाइफ में भी बिलीव करती हूँ. सो आई होप हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस चीज को बहुत ध्यान दें इसके ऊपर और इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लाई करने की कोशिश करें. तो हैरी, एंड में आज अगर अपने आप को, आज जहां आप खड़ी हैं अपने बच्चों के साथ, तो आपको सम अप करना हो अपना आज और पूरा रिफ्लेक्ट करना हो अपनी जिंदगी को कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, ना खुश हैं, कहाँ हैं, कैसी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमें जाते हुए?
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जो कुछ भी आपको मिले, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में गलत हो रहा है तो प्लीज डोंट एक्सेप्ट इट. हिम्मत बना के उससे बाहर निकलिए, हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि जितना आप बर्दाश्त करेंगे आप उतना ही नीचे गिरते चले जाएंगे. ठीक है, एक टाइम ऐसा हो आएगा जब आप उठ ही नहीं पाएंगे. तो उस सिचुएशन के आने से पहले इतना स्ट्रांग बनिए, उन चीजों से लड़िए और अपने लिए एक जगह बनाइए, जैसे कि मैंने कोशिश करी और मैं सक्सेसफुल भी हुई. आज मैं अपने बच्चों के सामने, ठीक है मेरे पास बहुत नहीं है, पर जितना है बाबा जी की बहुत कृपा है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुशियों और एक हेल्दी लाइफ बिता है. So I'm very happy. But इसके साथ मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली सोसाइटी के लिए. अगर एक लड़की सिंगल मदर होने का डिसीजन लेती है, इसमें उसकी गलती क्या है? क्यों उस लड़की को बार बार ब्लेम करके बार बार ये जताया जाता है कि ये तेरी ही गलती है? तेरी ही गलती है, तेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये लड़कियां कब तक सहती रहेंगी? हमारे समाज में ये चीज क्यों नहीं उनको समझ आ रही है कि नहीं, अगर इक्वेलिटी फैक्टर है तो लड़कियों को भी जीने का उतना ही हक है जितना हम लड़कों को देते हैं। देन सो वट अगर वो लड़की की लाइफ में प्रॉब्लम शादी के बाद आई है, लड़की को भी उतना ही डिसीजन लेने का हक होना चाहिए और उसके डिसीजन को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितना कि हम लड़कों के डिसीजन को देखते। तो ये मेरी सोसाइटी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज सिंगल मदर को आप उस नजर से मत देखिए, क्योंकि ये छोटे मोटा जिम्मेवारी वाला काम नहीं है। मुझे पता है मेरी लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल थी जब मेरी बेटी 4 साल की थी और मेरा बेटा 7 साल का था, मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे सेपरेट होना है। इट वॉज वेरी टफ जर्नी। तो मैं सिर्फ सोसाइटी से ये बोलूंगी, शायद वो इतनी टफ ना होती अगर मुझे सोसाइटी थोड़ा सा सपोर्ट कर देती। मैंने कोई गलती नहीं करी, अगर मैं वहां होती उस सिचुएशन में अपने हस्बैंड के साथ तो आज शायद मेरा बेटा भी ड्रग्स ले रहा होता, मेरी बेटी कहीं गलियों में रुल रही होती, पता नहीं मेरा क्या फ्यूचर होता। अगर मैंने डिसीजन लिया था, मैंने अपने बच्चों की भलाई के लिए, और आज वो उस डिसीजन में मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सब भी फाइनली दे ऑल आर इन माई फेवर, वो खुश है मेरी खुशी के साथ कि नहीं तूने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया।
जी थैंक यू सो मच हैरी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आज यू नो जब मैं हैरी को अपने पॉडकास्ट पे बात करते हुए रोता देखती हूँ, तो मैं सोसाइटी से ये कहना चाहती हूँ कि ये मत सोचिए कि हैरी के साथ जो हुआ उसका जिम्मेवार उसका पति और इन लॉज थे। आप सब जो ये सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब हैरी के आंसुओं के जिम्मेवार हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम लोग सिंगल मॉम्स, डिवोर्स, यू नो, इन सब चीजों को आज भी टैबू मानते हैं अपनी सोसाइटी में, क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं उनके कैरेक्टर को, उनकी इंटेग्रिटी को। सो एज अ सोसाइटी हम लोग इन लोगों को फेल कर रहे हैं। एंड प्लीज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि ये नहीं कि हम सिर्फ अब्यूज की बात करें कि डोमेस्टिक वायलेंस यू नो एक क्राइम है और उसमें से निकलने की जरूरत है। एज अ सोसाइटी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब वक्त आ गया है अपनी जिम्मेवारियां उठाने का, उसके खिलाफ आवाज उठाने का। अगर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज वहां पे स्पेक्टेटर बन के मत खड़िए, जाके सपोर्ट कीजिए, पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा होने दे रहे हैं। और सबसे जरूरी, प्लीज सिंगल मॉम्स डिवोर्स को स्टिग्मेटाइज मत कीजिए अपनी सोसाइटी में, और उनको सपोर्ट कीजिए, एम्पावर कीजिए। एंड आई थिंक सबकी तरह उन्हें भी बहुत खुशहाल जिंदगी जीने का हक है, और एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सबको सपोर्ट करें। सो हैरी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, आई एम इमेंसली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। एंड आई होप आपकी जर्नी किसी को मोटिवेट करने का अगर सोर्स बन सके तो आई थिंक हमने अपना जो पर्पस है वो अचीव कर लिया।
जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू महक जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। एंड सीरियसली बिलीव मी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी इस स्टोरी को सुनने के बाद एक भी लड़की की लाइफ में चेंज आ जाता है। भगवान ना करे ऐसी लाइफ किसी को जीनी पड़े, बट फिर से हाथ जोड़ के सोसाइटी के लोगों से ये विनती है, प्लीज एक्सेप्ट सिंगल मदर, प्लीज 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 प्लीज।
थैंक यू,
ओके ओके, थैंक यू,
थैंक यू। सो आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट सारथी।